السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. إن شاء الله تعالى हमारा प्रोग्राम क़ियामुल लैल का, सबसे पहले हम सीरीज़ करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह ज़िक्र और दुआ और आयात तदब्बुर, फिर हम इंशाल्लाह क़ियाम करेंगे और उसके बाद फिर दुआ होगी। अल्लाह ताला का सबसे पहले हम ये बहुत शुक्र अदा करते हैं, बहुत शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें 27वीं रात तक पहुँचाया। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह ताला का। जितने सुनने वाले हैं इसका मतलब अभी ज़िंदा हैं और अभी उनके पास चांस है, अभी ज़िंदा हैं और वो और निकियाँ कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह ताला का कि अल्लाह ने ये मौका अता फरमाया। ये सिर्फ़ उसकी करम नवाजी है हमारे ऊपर कि हम इस वक्त पे बैठे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ये उसका एहसान है हमारे ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह, चलते हैं अपनी सीरीज़ की तरफ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इसको भी हमारे लिए हमारी इस्लाह का ज़रिया बना दे। आज मैं घर से ये सोच कर आया था कि ऐनी आपा की कब्र पे जाके उनके लिए दुआए मगफिरत करूँगा। पता नहीं क्यों वो मुझे बार बार याद आ रही थी। इनकी कब्र यहीं कहीं थी, मैंने दूर देखा तो वहाँ लिखा था कुरातुल आइन। जब उनकी कब्र बनी थी तो यहाँ और कोई कब्र नहीं थी, और एक साल में ये जगह पहचानी नहीं जा रही कि ये वही जगह है जहाँ इतनी सारी कब्रें आसपास बन चुकी हैं। वाकई यहाँ की आबादी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैं आहिस्ता से उनकी कब्र के करीब बैठ गया और उनके लिए दुआएं करने लगा। ऐनी आपा मेरी खाला जात थी, इकलौती होने की वजह से बड़ी लाडली थी और अपनी धुन की बहुत पक्की थी। जो बात ठान लेती थी फिर उससे उनको कोई हटा नहीं सकता था। मुझे अच्छी तरह याद है जब उन्होंने एक इस्लामी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया था और कुरान की तालीम लेने लगी थी। उनकी तो ज़िंदगी बदल गई उसके बाद। हर वक्त कुरान उनके पास होता, कभी उसका तर्जुमा याद कर रही हैं, कभी उसकी बातों में गौर व फिक्र कर रही हैं, कभी तिलावत पढ़ने में लगी हुई हैं। खाला खालू काफ़ी मॉडर्न किस्म के लोग थे, उनके लिए इस नए रंग ढंग से एडजस्ट करना बहुत मुश्किल था। ऐनी आपा ने स्काफ, अबाया और नकाब तक शुरू कर दिया था, जो खाला को कहाँ हजम होना था। खाला और खालू बिल्कुल सेकुलर सोच के मालिक थे। घर में एक शोर खड़ा हो गया कि ये क्या तरीका है, ये किन के हाथों में पड़ गई हो। आहिस्ता आहिस्ता आपा की दोस्तें बदलने लगी। यहाँ पे अब किसी और किस्म की औरतें आने लगी जो ढकी छुपी थी, और ये बात भी खाला को बर्दाश्त नहीं थी। गोया उनके हलक से ना निगले चैन और ना उगले चैन, कांटा फंस गया था। मगर ऐनी आपा ने जो करना होता था कर गुजरती थी, फिर कोई किसी की नहीं सुनती थी। उनसे जब भी बात होती तो उस उनकी बातों में खुदा खौफी गालिब होती। हमेशा अल्लाह रसूल की बात के सिवा वो अब कोई बात नहीं करती थी। गोया उनकी ज़ुबान से फूल झड़ते थे, बात बात पे इनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। मैं हैरान होता था कि ये वही ऐनी आपा जो सिवाय फैशन के, फ्रेंड्स के, पार्टीज़ के और कोई मशगला नहीं रखती थी, ऐसे माहौल में रहते हुए भी इस तरह बदल जाना कोई आसान काम नहीं था। बहुत मुखालफत सही थी उन्होंने और डट कर सारे घर का मुकाबला किया था। मगर फिर वो हुआ जिसका डर हर इंसान को होना चाहिए, और ये वो ही है जिसके लिए हमारे नबी ने भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से दुआ की है, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिका। सोचता हूँ अगर हमारे नबी ये दुआ किया करते थे तो हम सब तो बहुत ज्यादा खतरे में हैं। हमें तो कितनी ये दुआ करनी चाहिए, और कभी इस घमंड में नहीं होना चाहिए कि मैं बड़ी दीनदार या दीनदार हो गया हूँ या हो गई हूँ, क्योंकि कदम कभी भी फिसल सकता है। और यही ऐनी आपा के साथ हुआ। वो एक बड़ी खलीज पार करके अल्लाह की तरफ आई थी, मगर पुरानी दोस्तों से उनका राबता नहीं टूटा था। वो दोस्तें मुसलसल उनकी उनको अपनी तरफ खींचती रहती थी, और इधर रंग अभी नया नया चढ़ा था। चंद साल तो आपा ने बड़ी साबित कदमी दिखाई, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कुछ बदलने सी लगी। उनकी बातों में अक्सर दीन वाले लोगों के लिए शिकायत उभरने लगी, एतराजात होने लगे। वो उठते बैठते उनकी किसी ना किसी बात को निशाना बनाने लगी, और उनकी पुरानी दोस्तों का घर में आना जाना भी बढ़ने लगा। अब मीठी जुबान की जगह वो ही लाउड आपा वापिस आने लगी। इसमें खाला जान का भी बहुत हाथ था, क्योंकि उनकी दिली तमन्ना ये थी कि ऐनी आपा दोबारा, जिसको वो कहती थी नॉर्मल नॉर्मल हो जाए। खाला खुद फोन करके ऐनी आपा की उन दोस्तों को बुलाया करती थी, और फिर जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, आपा भी अब उनके गुण गाने लगी। उन्होंने दोबारा अपने खूबसूरत जाल में इनको फांस लिया। वाकई हमारे नबी ने सच फरमाया कि दिल तो अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान होता है, वो जिधर चाहे उसको फेर दे। आपा की पुरानी आदत लौटने लगी। जब खाला की तरफ जाते थे तो पूछना, ऐनी कहाँ है? वो शॉपिंग पे गई है दोस्तों के साथ। फिर आपा शादी ब्याहों पे बगैर नकाब के नजर आने लगी। ये क्या हुआ? पूछने पर पता चला कि आपा का सांस घुटता है अब नकाब में। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह रसूल की बातों की जगह ब्रांड नेम्स, वेकेशन प्लान्स, एग्जीबिशंस, किटी पार्टीज ने ले ली। जो कुछ उन्होंने पढ़ा सीखा था सब भूल गई, और कुरान सीखने को तो उन्होंने बहुत दिनों से ही खैर बात कह दिया था। लिहाजा जो वहां की दोस्तें थी उनके साथ भी नाता खत्म हो गया। यूं लगता था जैसे ऐनी आपा जंजीरों में कहीं जकड़ी हुई थी, जिनको तोड़ के अब आजाद हुई है। और मेरी हैरत की इंतहा न रही जब ईद के दिन मैंने उनको बगैर अबाया के देखा। सर पे स्काफ भी सिर्फ बराए नाम ही टिका हुआ था। मुझे उस दिन खूब अंदाजा हो गया था आपा कहाँ तक पहुंच गई हैं। मुझे अफसोस ये होता था कि उनसे तो हम बहुत कुछ सीख रहे थे, अब ये उनको क्या हो गया? शैतान धोखेबाज ने इनको कैसा धोखा दिया कि उनमें एहसास तक खत्म हो गया कि वो क्या कर रहे हैं, वो कितने बुलंद मकाम पे चढ़ते चढ़ते और कहाँ से गिरी। यूं लगता था सब्जा उगा मगर जमीन के ऊपर ऊपर था, इसीलिए पानी के एक रेले से ही सब बह के चला गया। ना वो बातें, ना वो सोच, ना वो किरदार, ना वो अखलाक, ना वो इबादत का शौक, ना वो बातों में नरमी। फिर एक वो दिन आया जब मैं हॉस्टल से छुट्टियों में आया तो अम्मी ने रो रो के बुरा हाल किया हुआ था। पूछने पर पता चला कि ऐनी आपा की तबीयत कुछ अरसे से खराब चल रही थी, टेस्ट करवाने पे पता चला कैंसर है, और वो भी लास्ट स्टेज पे आ चुका है। सारे खानदान पर ये खबर बिजली बन के गिरी। इस बात को 2-3 महीने गुजर चुके थे, मगर मुझे इसलिए इतला नहीं दी गई थी कि मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। अम्मी ने बताया कि शुरू में तो अस्पताल में उनको रखा गया, मगर अब अस्पताल वालों ने भी कह दिया कि घर ले जाएं। मुझे बहुत दुख हुआ। हमारी अपनी कोई बहन नहीं थी और आपा को हमने हमेशा बड़ी बहन समझा था और उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। मैं फौरी खाला के घर की तरफ रवाना हो गया और वो दिन मुझे नहीं भूलता जब मैंने ऐनी आपा की जगह उनके बिस्तर पर हड्डियों के ढांचे को देखा। मैं पहचान ही नहीं सका कि ये वो ही शोख ऐनी आपा जो चहचहाती फिरती थी। वो नीम बेहोशी में थी, उनसे कोई बात नहीं हो सकी। मैं कुछ देर बैठ के वापस आ गया और चंद दिन के बाद वो अल्लाह को प्यारी हो गई। इंसान को पता नहीं होता कि वो जब मौत की दहलीज पर कदम रखेगा तो उसकी ईमानी हालत क्या होगी। वो नहीं जानता कब उसके लिए बुलावा आ जाएगा। वो तो बड़ी लंबी प्लानिंग करता है कि अभी मैं जवान हूँ, मगर मौत का फरिश्ता जब आता है तो सब कुछ धरा रह जाता है। मैं आहिस्ता आहिस्ता आपा की कब्र की मट्टी को दुरुस्त करने लगा। कब्र का हाल भी कोई बहुत अच्छा नहीं था। यूं लगता था यहाँ पे कोई नहीं आता। कहाँ गई उनकी वो दोस्तें जो जिंदगी में तो उनका पीछा नहीं छोड़ती थी, मगर अब उन्होंने आके अपनी दोस्त की खबर तक नहीं ली। जुनेद, शुक्र है तुम आ गए। आपा की नरमो मुलायम आवाज जो कभी कुछ अरसे के लिए उनकी हुआ करती थी, वो मेरे कानों में गूंजी। कैसी गुजर रही है आपा, बस क्या बताऊं। और इसके बाद आपा के सिर्फ रोने का शोर था। मैं परेशान हो गया, क्या हुआ है आपके साथ? जुनेद, मेरा सर, हाय मेरा सर, क्या हुआ आपके सर को? मेरा सर रोजाना एक पत्थर से कुचला जाता है जिससे मेरा दिमाग पाश पाश हो जाता है। जो कुछ सर में है चूरा चूरा हो जाता है, फिर वो पत्थर दूर जाके गिर जाता है और कोई जाके उसको उठा के लाता है, तब तक मेरा सर फिर सही हो जाता है। फिर वो इतनी जोर से मेरे सर पे फिर वो पत्थर मारता है जिससे मेरा सर फट जाता है और उसकी हर चीज चूर चूर हो जाती है। फिर पत्थर दूर गिरता है, फिर वो लेने जाता है और मेरा सर वापस तैयार हो जाता है एक और पत्थर खाने के लिए। मैं इस अजियत से कब से गुजर रही हूँ। मैं तो वो थी जो जिंदगी में सरदर्द की गोली पर्स में रखा करती थी कि जरा सा सरदर्द हुआ तो गोली खा लूंगी। अब मुझे बताओ, अब मैं इस सरदर्द का इलाज कहाँ से लाऊं? तुम्हें याद है ना, जब मुझे सरदर्द हुआ करता था तो मैं बर्दाश्त नहीं करती थी, सारा घर पे सर पे उठा लेती थी कि हाय मेरा सर फट रहा है, मेरा सर फट रहा है। अब पता चला है सर फटना क्या होता है। वो तो कोई दर्द था ही नहीं, वो तो चुटकी के कांटे के बराबर था। इसके मुकाबले में जिससे मैं आज गुजर रही हूं, मेरा सर फटता है तो मैं अपने होश खो देती हूँ, सारा जिस्म दर्द से बिलबिला उठता है और फिर मैं खौफजदा हो जाती हूँ कि अब ये ठीक हो रहा है तो अब दोबारा इसी अजियत से मुझे गुजरना है। यानी आपा का रोना मुझसे सुना नहीं जा रहा था, उनकी आवाज का कर्ब बता रहा था कि वो कितनी तकलीफ में है। मगर आपा, ऐसा क्यों हुआ? आपने ऐसा क्या किया? जुनेद, मैंने कुरान सीखा था, पढ़ा था, मगर फिर भुला दिया, सब कुछ छोड़ छाड़ दिया था। क्या खबर थी कि आनन फानन ये कैंसर डायग्नोज हो जाएगा और मैं यहां तक पहुंच जाऊंगी। जब से ये बीमारी पता चली थी उसके बाद तो मुझे कोई मौका ही नहीं मिला, मेरे तो होश ही ठिकाने नहीं रहते थे। इस कदर अनएक्सपेक्टेड खबर थी ये मेरे लिए और सारे घर वालों के लिए, किसी बम गिरने से कम नहीं थी। फिर तो सिवाय दिन रात डॉक्टरों और अस्पतालों के चक्करों के और कोई काम ही नहीं था। मुझे कहाँ वक्त मिलना था कि मैं कुछ रिवर्स कर सकूं। मैं जिंदगी की तलाश में मारी मारी फिरती थी, कभी किसी लैब में, कभी किसी स्पेशलिस्ट के पास, कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी बाबे के पास, कभी किसी होम्योपैथिक के पास। मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी, मैंने वाकईतन जिंदगी की भीख मांगने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। ऐसों में नमाजों तक का होश नहीं रहता था, कुरान तो बड़ी दूर की बात है। मैं वो बदनसीब हूँ जिसको अल्लाह ने अपनी तरफ आने का रास्ता दिखाया, मगर मैं रास्ता देख के वापस पलट गई और उसके बाद तो जिंदगी खत्म हो गई। मैं भूल गई थी कि लौटना भी है, जबकि मैंने तो सब कुछ पढ़ा हुआ था। मैं तो ये हदीस भी जानती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़कर भूल जाने वाले के लिए ये ही सजा बताई हुई थी। लेकिन दुनिया का जादू ऐसा है कि इंसान सब पढ़ा लिखा भी भूल जाता है। मैंने अपने हाथों से खुद को बर्बाद किया, अब किसको इल्जाम दूं? किसी का कसूर नहीं, मेरा अपना ही कसूर है। मैं किसका गिरेबान पकड़ूं, किससे कहूं, कौन मुझे इस अजियत से निकाल सकता है? कब मेरी ये सजा खत्म होगी मैं नहीं जानती, या क्या क्यामत तक मैं इसी में मुब्तिला रहूंगी? वो फिर जोर जोर से रोने लगी। अब इसके लिए किस डॉक्टर के पास जाऊं, कौन से हकीम को दिखाऊं, कौन मेरा इलाज कर सकता है? जुनेद, तब तो सिवाय दिन रात के पछतावों के और हसरतों के मेरे पास कुछ भी नहीं। जब मेरा सर टूटता है तो हर बार खुद को मलामत करती हूँ कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये क्यों कर दिया। अब सिर्फ मुझे एक मौका और मिल जाए ना, तो वापस जाके मैं सब ठीक करूंगी। सिर्फ एक मौका, एक चांस, ज्यादा नहीं मांगती, सिर्फ एक चांस। फिर रहनी आपा की आवाज फिजा में कहीं गुम हो गई। आपा की बातें सुनकर मैं सख्त दुखी हो गया और सोचने लगा, अगर कुरान सीख के भुलाने वाले की इतनी बड़ी सजा है, तो जिन्होंने कुरान को कभी अहमियत ही नहीं दी, ना सीखा ना समझा, इसको बिल्कुल ही भुला के रख दिया, उनकी कितनी बड़ी सजा होगी जिन्होंने इसको इस काबिल ही नहीं समझा कि एक बार भी इसकी तरफ आए। ऐसे लोगों की सजा का क्या हाल होगा? मुझे आज शिद्दत से एहसास हो रहा है कि मैं महफूज नहीं हूं। जब तक ईमान पे मौत ना आ जाए और मैं दुनिया की इस सरहद को पार ना कर जाऊं, उस वक्त तक मैं कैसे मुतमईन हो सकता हूं? जब तक कलमे पे मैं दुनिया से ना जाऊं, मैं कैसे चैन से बैठ सकता हूं? जब तक मेरा आखिरी दिन, आखिरी वक्त बेहतरीन ना हो जाए, उस वक्त तक मैं बेफिक्र कैसे हो जाऊं? पता नहीं मेरे आखिरी वक्त तक मेरी ईमानी हालत का क्या होता है। हाय रे, ये कैसी जगह है जहां सिवाय हसरतों के कुछ नहीं। इसका नाम कब्रिस्तान नहीं, हसरतों का घर होना चाहिए। यहाँ के हर फर्द के पास यही हसरत है कि काश वापस जाके मैं कुछ बेहतर कर लूँ, मैं कुछ फिक्स कर लूँ जो यहाँ काम आ जाए। मगर ये बात जिंदों को समझ क्यों नहीं आती? शायद उनको किसी ने बताया ही नहीं। फिर मेरे अंदर से ही एक आवाज आई, क्यों नहीं बताया? हमारे नबी तो नसीहत करके गए थे कि लोगों इस जगह की तैयारी कर लो। हाँ, मगर लोगों की अक्सरियत को इस नसीहत का इल्म ही नहीं, और जिसको पता चल भी गया वो भी दुनिया में ऐसा खोया कि तैयारी करना ही भूल गया। फिर जब यहां पहुंच गया तो तैयारी का वक्त खत्म हो चुका है। फिर वक्त मांगते हैं तो वक्त नहीं मिलता, फिर रो पीटो, दुहाइयां दो, फरियादें करो, मगर घंटी बज चुकी होती है, पर्चा लिया जा चुका होता है। अब सवालों के जवाब सही करने का वक्त नहीं होता। मैंने कहा बरी, और सोचा अगर कब्रिस्तान वालों का ये हाल है तो उस दिन क्या हाल होगा जिसका नाम ही यौमुल हसरा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमें भी इस जिंदगी में अपनी आखिरत के लिए, अपनी कब्र के लिए कुछ ना कुछ अमल करने की तौफीक अता फरमाते हैं जो हमारे लिए तोशा बन जाए। या अल्लाह, हम तो कुछ भी नहीं कर पाए। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाते हैं इससे पहले कि हमें हसरतें हों, हमें पछतावे हों कि हमने किधर वक्त गुजार दिया। क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करेगा, ये भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, ये किसी का इंतजार नहीं करेगा, ना मेरा ना आपका। एक दिन ये बोलती बंद हो जानी है, ये जो बातें हैं ना ये बंद हो जाएंगी, ये आवाजें खामोश हो जानी है, और फिर कभी ये आवाजें इन फिजाओं में नहीं गूंजेंगी। हम नहीं होंगे, कोई और होगा, और नहीं होंगे, कोई और होगा। दुनिया को फर्क नहीं पड़ेगा, मगर हाँ, हमें बहुत फर्क पड़ेगा। ये वक्त बड़ा कीमती है प्यारी बहनों, इससे फायदा उठा लो। खास तौर पे ये रातें बहुत ज्यादा कीमती हैं, बहुत ज्यादा कीमती। ये वो वक्त है कि जिसकी एक रात हमें मिल गई ना तो हमारी जिंदगी बन सकती है। एक रात भी मिल गई, इन रातों में अपने लिए कोई ना कोई अहद कीजिए कि आगे ऐसे नहीं अब चलेगा जैसे चल रहा था, आगे बदलना है। बड़ा इंतजार कर लिया, अब करेंगे, अब करेंगे, अब नेक बन जाऊंगी, अब ऐसे हो जाऊंगी, अब मैं कब कहती हूँ नहीं करूंगी, मैं करूंगी कल परसों, कल परसों। वो कल कब आएगी बताएं? वो कल कब आएगी? इनसे जाके पूछें जो जमीन के नीचे पड़े में, वो आपको बताएंगे। कल का इंतजार कभी ना करना, कभी ना करना। वो कल कभी नहीं आती। इंसान जमीन के नीचे चला जाता है मगर वो कल नहीं आती। आज करना है जो करना है, और इन रातों में तो जो नेकी की नियत आप कर लेंगे ना, तो एक नेकी लिखी जाती है नियत करने पे भी आम दिनों में, लेकिन जो इन रातों में नेकी की नियत कर लेगा, अगर मसलन आप नेकी की आज नियत ये कर लेते हैं कि अब मैंने कुरान सीखना है, क्योंकि ये रातों, इस रात का शर्फ क्या है? इस रात का शर्फ ये है, इसकी अजमत इस बात पे है कि इसमें कुरान उतरा, अब हम जागे में इस रात में, क्योंकि हमें ये रात पता चल रही है कि ये कितनी कदरों कीमत वाली रात है, हम इसकी तलाश में लगे में। वो रात जिसकी बरकत ही किस वजह से है? कुरान की वजह से। वो रात जिसकी अजमत इस कुरान की वजह से। हम इस रात की ताजीम करते हैं, मगर वो चीज, वो कलाम जिसकी वजह से इस रात को इज्जत मिल गई, उसको इज्जत नहीं देते। और उसकी इज्जत ये है, उसको जिंदगी का साथी बना लें, साथी बना लें, ताकि ये कब्र में हमारा साथी बन जाए, इसको साथी बनाएं। आज ही सोचें मैंने क्या करना है, क्या बस इसी तरह चलता रहेगा, यहाँ अब कुछ बदलना चाहिए, अब बहुत हो गई। तो इस रात जो आप नेकी की नियत करेंगे, समझें कि 84 ईयर से भी ज्यादा की नेकियां आपको मिलेंगी, क्योंकि एक नेकी की नियत पे एक नेकी लिख ली जाती है, लेकिन वो आम दिनों की है, और इस रात में नेकी की जो नियत कर ले उसके लिए कितना लिखा जाएगा। तो इस कुरान के साथ जुड़े, जिन्होंने इसको छोड़ दिया वरना ना वो वापिस आ जाए, जिन्होंने कभी इसको थामा ही नहीं, वो एक दफा तो इसकी लज्जत लेके देखे। आपका जी नहीं चाहता कि मैं कुरान पढ़ूं और मेरे आंसू आए, मैं कुरान पढ़ूं तो मुझे समझ आए, ये जी नहीं चाहता, नहीं चाहता जी कि मैं इसके साथ जुड़ जाऊं। हे अल्लाह, मेरी जिंदगी में भी कुरान की बहार आ जाए, मैं भी पढ़ूं तो मुझे मजा आ जाए, मैं भी इसकी तरफ आऊं, ये मुझे अपना लगे, या अभी भी इंतजार है उस दिन का। ये अल्लाह ताला ने फरमा दिया, कल्ला इदा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, हर किसने जब ये जमीन ना रेजा रेजा कर दी जाएगी कूट कूट के, वह जया और रब्बू कवल मलकु सफन सफा, और तेरा रब आ जाएगा और फरिश्ते भी सफ दर सफ आ जाएंगे, वह छीना यौमा दिन भी जहन, उस दिन जहन्नम लाई जाएगी, वह यौमा दिन ये तजक्करुल इंसान, उस दिन इंसान याद करेगा, सोचेगा, वह अन्ना लहु जिक्रा, मगर अब सोचने का क्या फायदा, यकूलू वो कहेगा, या लैतनी कद्दमतु ली हयाती, अरे काश मैंने इस जिंदगी के लिए कुछ आगे बेचा होता, काश मैंने कुछ किया होता। क्या इस दिन का हम इंतजार कर रहे हैं कि ये हो जाए और फिर हम पछताएं? अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हम अपनी इसलाह कर लें, अल्लाह इसमें हमारी मदद फरमा, अल्लाह है दिलों को खोलने वाला, अल्लाह हमारे दिलों को खोल दे, हमारे सीनों को खोल दे नेकी के लिए, कुरान के लिए, इसको हमारा साथी बना दे, और अल्लाह हमारा खात्मा बिल खैर करना, या अल्लाह हमारा खात्मा बिल खैर करना, ईमान पे हमारी रूह निकले, या अल्लाह उस वक़्त शैतान के वसवास से हमें महफूज रखना। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. ایک سیگمنٹ کے لیے چلتے ہیں.